सकते, सिर्फ चार सलाम करते रहो, सलाम अल हुसैन वाला अली अब्दुल हुसैन वाला औलाद अल हुसैन वाला सब, इसलिए कि तुम इमाम इस वक्त तुम्हारा मेहमान है, इमाम तुम्हारे घर में। मुहर्रम एक हमारे रिश्ते को मजबूत करता है, मुहर्रम जब आता है तो हम मौला हुसैन से बिल्कुल करीब हो जाते हैं, और अब यार सो लकी कि मौला हुसैन हमको एक मौका दे रहे कि हम अपने आप से कनेक्ट करने का, अपने आप से करीब होने का। इससे बेहतर क्या है कि इस दौर में कि जब इमाम हमारा पर्दे गैबत में है और मुहर्रम आया, वारिस अज़ा तो ज़माने का इमाम ही है, तो हमारे लिए एक बहुत अच्छा मौका है। मौला हुसैन के ज़माने में नहीं थे, तो अगर होते तो हम मौला के करीब होते, लेकिन अब हम दूर हैं। लेकिन आज भी जब दूर है, इमाम के ज़माने में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये करम मासूमीन है, ये करम इमाम है कि उन्होंने ज़ियारत के ज़रिए हमको करीब कर लिया। आप बोलेंगे ज़ियारत के ज़रिए कैसे करीब होते, इसलिए कि जब आप सलाम करते हैं तो सलाम वाजिब नहीं है, जवाब सलाम वाजिब है। ये सबको पता है कि जब आप सलाम करते हैं तो जवाब आता है, जवाब जिसको कर रहे सलाम वो आपको जवाब ज़रूर देता है, ज़रूर देता है, और ये तो करम है हुसैन है, एक ऐसा करीब। तो आप अगर ज़ियारत वारिसा पढ़ या आशुरा पढ़, मौला हुसैन की कई ज़ियारत हैं, उसमें वारिसा एक ऐसी ज़ियारत है, उसमें लगभग 11 या 12 मरतबा आप इमाम को सलाम करते हैं और 11 और 12 मरतबा मौला तुमको जवाब दे। आप सोचो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो कम अज कम इस मुहर्रम में वारिसा स्टार्ट कर दो, मुसलसल पढ़ते रहो, और ये तसव्वुर करो कि मैं अपने मौला हुसैन को सलाम करूँ। हो सकता दोस्तों मैं बड़ी बात बोल रहा हूँ, हो सकता जब तुम कहो सलाम अलैका या वारिसा आदम सफ़त तो तुम्हारे कानों में इमाम हुसैन की आवाज़ आए। हम अपने कान को इस काबिल कर दें, हम कान को इस काबिल कर दें कि हमारे कानों में मौला हुसैन की आवाज़ आई, जवाब सलाम आए। हम और इसमें कोई बईद नहीं है, कोई हैरत मत करो, इमाम तो जवाब दे रहा, लेकिन उनकी आवाज़ हमारे कानों में इसलिए नहीं आ रही कि हमने इन कानों से बड़ी गीबतें सुनी हैं, हमने इन कानों से बड़े गुनाह किए हैं, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, हमने बड़ी गीबतें की हैं सुनी हैं, जिसकी वजह से हमारे कान के सामने इतने पर्दे आ गए कि मासूम की आवाज़ हमारे कान में नहीं आती। यहाँ तक कि जब आप ज़ियारत पे जाते हैं और जाकर जब आप कहते हैं सलाम अलैका या अबा अब्दुल्ला, मौला के जरिए मुबारक को देखे तो आप क्या समझे, मौला जवाब नहीं देते, जवाब नहीं देते, ये जहन से निकाल दो। इमाम जवाब देता है, 100% जवाब देता है, जब आप सलाम करते हैं तो मौला हुसैन तुमको जवाब देते हैं, लेकिन हमारे कान उस काबिल नहीं है कि हम मौला हुसैन की आवाज़ सुन सकें। तो कम अज कम इस मुहर्रम में एक अहद करो अपने इमाम से, एक प्रॉमिस करो अपने इमाम से, एक वादा करो अपने इमाम से कि मौला मैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह अपने कानों के वो सारे गुनाह माफ़ करवा लूँगा, सारा गुनाह नहीं करूँगा कि जिसकी वजह से मेरे कान के ऊपर पड़ गया है। दोस्तों ये सब के ये पैगाम था नौ मुहर्रम के मजलिस का कि इमाम को सलाम करना और जवाब इमाम सुनना, हम इस काबिल बन जाए कि मौला हुसैन का जवाब हमको आए। तो कितनी मरतबा, 11 मरतबा, लगभग 10 से 11 मरतबा आप इमाम को सलाम करते हैं, इस कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात कि मैं मौला को 11 मरतबा लगभग सलाम कर रहा हूँ और 11 मरतबा इमाम तुमको जवाब दे रहा, अलैका सलाम अलैका सलाम। जब इमाम जवाब देता तो सोचो मौला हुसैन का जवाब हमारे लिए आ रहा, आप सलाम कर रहे हो और मौला हुसैन आपको जवाब दे रहे। तो बस जब आप वारिसा पढ़ो तो उससे जो है कनेक्शन होता है इमाम से। मैंने एक जुमला कहा था कि जब आप ज़ियारत पढ़ते हो तो उससे आपका अपने इमाम से कनेक्शन बनता है। इसकी मिसाल आपको दूं कि अगर आप किसी शख्स, आप किसी बस्ती में रहते हैं जहां आप रहते हैं, जो आपका पड़ोसी हो या जो कोई हो, आप रोज़ उसको सलाम करते, उसके दरवाजे पर जा रहे, मिसाल दे रहा मैं, दरवाजे पर जा रहे और जाके उसको नॉक करके जब वो आ रहा बाहर उसको आप सलाम करते, अजनबी है आप, वो आपको नहीं जानता, आप उसको नहीं जानते, वो जानता भी है तो आप नहीं जानते, रोज़ सलाम करो किसी शख्स को, रोज़ सलाम करो 8 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन। जब आप सलाम करोगे तो वो आपका चेहरा जानने लगेगा, वो आपको पहचानने लगेगा, आप 1,00,000 के मजमे में आप नजर आए तो वो पहचान लेगा कि ये वही शख्स है जो रोज मुझे आके सलाम करता है। दोस्तों ये तो खाकी इंसान, वो तो इमाम है। आप 1 सलाम करेंगे आपको जाना, नहीं भी करेंगे तो आपको जाना। अगर तुम अपने कनेक्शन को, अपने रिश्ते को मजबूत करना चाहते तो इमाम को सलाम। और मुहर्रम से बेहतर क्या, इन अय्याम से बेहतर मौका क्या है कि आप अपने मासूम इमाम से, अपने मजलूम इमाम से, कि जिसके नाम से आज हम पहचाने जाते हैं, और हमको फख्र है इस बात कि मौला हुसैन के नाम से आज हम पहचाने जाते हैं। और दुआ भी यह है कि अल्लाह रोज़े महशर तू भी जब पुकार तो ये कहकर पुकार कि ऐ हुसैन के आज़ादार आदमी, ये मेरी बख्शिश का सामना है, मौला हुसैन से अगर मेरा नाम लग जाए बस इससे अच्छी बात है। तो दोस्तों कोशिश करो कि ज्यारत मौला हुसैन में ज्यारत वाली सफे नहीं पढ़, ज्यारत पढ़ के रोज इमाम को सलाम करो और ये तसव्वुर करके सलाम करो। जब पहला जुमला बोलो अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह तो जवाब आए, जवाब का इंतजार करो, हो सकता है मौला हुसैन की आवाज तुम्हारे कान में तकदीर बदल जाए, डेस्टिनी बदल जाए। ये वारिसा में भी है और ये ज्यारत आशुरा है। ये जुमले पूरा सलाम जब खत्म होता, पूरे सलाम जब खत्म हो उस वक्त हम ये कहते हैं कि अस्सलाम अलैका या सारल्लाह व अपने सारे वल्लाह, इस पे सलाम खत्म होता। आखिरी सलाम ये कि अस्सलाम अलैका या सारल्लाह व अपने सारे, क्या मतलब है इसका, कि हुसैन आपके व अपने सारे और आपके बाबा के खून का बदला भी लिया अभी आपके और आपके बाबा का। सलाम अलैका या सारल्लाह व अपने सारे वल वितर, ये मसायब का जुमला है कि हुसैन आपकी लाश को अकेला छोड़ दे। आप सोचो हुसैन की लाश को अकेला छोड़ दे, सलाम अलैका या सारल्लाह व अपने सारे वल वितर, कि हुसैन आपके और आपके बाबा के खून का बदला। तो हम इंतजार में हैं, वी आर वेटिंग, और हमको मौका दो कि हम ये नुसरत करें। इस मुहर्रम में ये दुआ करो कि मौला हम आपकी नुसरत करें वैसे जैसे करबला वालों ने आपकी नुसरत की। हम ऐसे तो नहीं कर सकते, लेकिन दुआ करना तो कोई हर्ज नहीं, दुआ तो मांग सकते कि मौला हमको मौका दो कि हम वैसी नुसरत करें जैसा आप चाहते हैं, जैसा आप चाहते हैं। अगर ये मौका मिले तो ये मौका कब मिलेगा, ये मौका आज नहीं मिलेगा, कल नहीं मिलेगा, ये मौका ज़ुहूर इमाम के बाद इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। इसीलिए हमारे पास ये हुक्म है कि शिया हायर ओकेशन में गैबत कुबरा में गैबत सुखरा में गम मुस्कुरा सकता, खुश रह सकता, लेकिन दिल गमगीन है, कह रहे मेरा मौला है और मैं मौला की ज़्यादा नहीं कर सकता, मौला की मदद नहीं कर सकता, इस इमाम की मदद। और मौला हुसैन ने तो मदद मांगी भी है हमसे, मौला ने हमसे मदद मांगी है ये कहकर आशुरे के जब इमाम मदद मांग रहे थे क्या इमाम को इसका पता नहीं था कि पूरा घर रुक गया, अब कोई मेरी मदद करने वाला, फिर क्यों मांगा, मांगा फिर क्यों कहा। इमाम ने जैसे ही कहा जमीन और आसमान में हलचल मच गई, इसलिए कि ये पहला मौका था कि कोई अल्लाह की हुज्जत नुसरत मांग रहा था। जमीन और आसमान में हलचल मच गई, मलाइका आ गए और आकर कहने लगे फर्जंद रसूल हुक्म करें क्या मदद करें, अजिन्ना आ गए कहा मौला आप हुक्म करें क्या मदद करें, तड़पती हुई लाशों ने पुकार के कहा मौला हम मजबूर है उन्हें हम आपकी मदद के लिए हाजिर। हर तरफ से जिब्रेल हो मीकाईल हो इसराफील हो इसराइल सारे मलाइका आते आके कहा फर्जंद रसूल आप हुक्म करें आप हुक्म करें मदद करने हम तैयार। लेकिन हुसैन ने जिब्रेल से भी मीकाईल से सबसे कहा नहीं, जाओ वापस जाओ वापस जाओ वापस जाओ वापस जाओ, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। जब नहीं चाहिए फिर इमाम ने क्यों पुकारा, फिर इमाम ने क्यों कहा कि कोई है जो मेरी मदद करे। तो दोस्तों याद रखो आशुरे के दिन से लेके ताज़ुहूर इमाम अगर कोई शिया, कोई इमाम का चाहने वाला, कोई इमाम का मददगार, कोई इमाम का आजादार, कोई इमाम से मोहब्बत करने वाला, औरत मर्द लड़की लड़का सबको बोलता, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम अपने इमाम की मदद करो, तो आज भी हुसैन का दरवाजा खुला हुआ है। आज भी मौला हुसैन पुकार रहे हैं कि हम नासिर, कोई है जो मेरी मदद, आज भी तुम मदद कर सकते। आप बोलेंगे आज के जमाने में 21st सेंचुरी में क्या मदद करेंगे, आपको मदद आप उसी अंदाज से कर सकते जैसे आप चाहते। सिर्फ फॉलो द पाथ ऑफ इमाम हुसैन, वो हुसैन की मदद है, मौला के रास्ते को फॉलो कर, मौला की इशादात को फॉलो कर, ये इमाम की मदद। 24/7 में 5 मिनट तो मदद करो, महलबा चैनल के प्लेटफॉर्म से बोल रहा लंदन से, 5 मिनट तो करो इमाम के लिए मदद। सिर्फ ये जहनों से निकाल दो कि ये मेरे लिए, ये मैं नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। हर चीज तुम कर सकते, कुछ नहीं, घर में बैठकर मुसल्ले पे दुआ करते थे कि मौला मुझे मौका दो, गिव मी चांस टू सर्व यू, गिव मी चांस टू सर्व यू। ये जहन में रहना हमेशा कि मैं अपने इमाम की मदद करूं, मैं अपने इमाम की मदद करूं। दोस्तों, नुसरत इमाम अफजल तरीन इबादत है, अफजल तरीन इबादत, इससे अफजल कोई इबादत नहीं है। सारी इबादतें एक तरफ, नुसरत इमाम एक तरफ, अगर इमाम की तो नुसरत करो, इससे बेहतर कोई इबादत नहीं। और जब आप वारिसा में भी बोल रहे हैं सलाम अलैका या सार अल्लाह वबना सार, बार बार पुकार, तो अब आपके ऊपर लाजिम है, लाजिम है कि हम कोई ना कोई मदद ऐसे इमाम की करने की कोशिश 24 घंटे में एक दफा करें। क्या, अब मैं आपको बता, इसी सलाम के फौरन बाद छठे इमाम ने जियारत में 4 जुमले कि मकसद हुसैन क्या था, करबला में इमाम क्यों आए थे, इमाम ने क्या कहा, फौरन आपको जहन में होगा, जैसी जियारत सलाम खत्म हुआ हम फौरन कहते हैं कि अशहदु अन्नका खदकमता सलाता व आतैता ज़कता व अमरता बिल मारूफ है व नहीता, ये चाहिए मकसद इमाम को रख दिया कि करबला में इतना बड़ा ये वाकया क्यों हुआ, इतनी बड़ी ये जंग क्यों हुई, फौरन मकसद इमाम को मौला ने रखा कि सलाम अशहदु अन्नका खदकमता सलाता व आतैता ज़कता व अमरता बिल मारूफ है व नहीता। क्या हुसैन, आपने नमाजों को कायम किया, अब अगर तुम नमाजों को कायम कर रहे हो तो तुम नुसरत इमाम कर, तुम नमाजों सजदे कर रहे हो तो तुम नुसरत इमाम कर, ये याद रखो। उसके बाद आपने अमर बिल मारूफ किया, आपने नहीं अनिल मुनकर किया, आपने ज़कात अदा की, ये 4 चीजें जो मकसद करबला हम पेश कर रहे हैं। ये मैं नहीं बोल रहा, ये मेरा इमाम बोल रहा, छठा इमाम बोल रहा, जिनके जरिए ये ज़ियारत वारिसा हमारे पास है। ए मौला हुसैन, आपने नमाजों को कायम किया, और ऐसा कायम किया, हर सजदा याद रखो हुसैन की कामयाबी का ऐलान है। तो खुद तो पढ़े, बच्चों को आदत डालो, छोटे बच्चे, माँ नमाज पढ़ी थी, अगर बच्चा पहलू में खेल रहा तो खेल ले, तो उसकी आंखों में, उसके जहन में आएगा कि ये नमाज ऐसे हो। मस्जिदों को लेके जाओ, इमाम बारगाहों को लेके जाओ, बच्चों को लेके जाके उनको बताओ, उनको साथ लेके जाओ, नहीं पढ़ रहे नमाज कोई बात नहीं, लेकिन वो देखेंगे कि बाप तुम्हारा नमाज पढ़, बाप तुम्हारा इस तरह सजदे कर, बच्चों से बात करना, मुहर्रम से बेहतर कोई मौका नहीं। मैं सारी अपनी माओं को बोल रहा, सारी अपनी बहनों को बोल रहा कि ये बेहतरीन मौका है आप अपने आप को मौला हुसैन से करीब करने का, और खुद भी करीब हो, अपनी औलाद को भी करीब करो, इसलिए कि आज के हालात ऐसे कि आपको अपने आप को इमाम से कनेक्शन रखना लाजिम है, इमाम से करीब होना लाजिम है, वरना इस वक्त जो हालात है शियत के, ये शियत के हालात हमको ख़त्म कर देंगे। आप उन लोगों के दिल से पूछो कि जो इस वक्त कुछ मुल्कों में है, मैं नाम नहीं ले रहा है, वहाँ पे आज़ादारी नहीं हो रही, वहाँ पे जिक्र हुसैन नहीं हो रहा, आज ये साल उनका कैसा गुजर रहा होगा बग़ैर आज़ादारी के, बग़ैर मातम के, बगैर गिरिया के। देखिए, घर में बैठ के, अकेले बैठ के भी मजलिस कर सकते, कोई मुश्किल नहीं, लेकिन 10 दिन में तो ये तसव्वुर रहता क्या रहे, हमको जिक्र हुसैन करना, हमको इमाम बारगाह जाना। दुआ करो लंदन में बड़े आराम के साथ आप जिक्र हुसैन करो, अल्लाह इसी तरह तुम करते रहो। इस तो अब जब मौका मिला तो अपनी औलाद को लेकर जाओ, अपनी औलाद को मजलिस में लेकर जाओ, फर्श अज़ा पे बिठाओ, और बिठाने के बाद उस फर्श अज़ा की बरकतें तुमको मिलेगी, फिर आप जो है इमाम से और करीब होंगे। इसलिए कि दौरे अज़ा में इंसान अपने मजलूम से करीब होता, मजलूम से आप बोलेंगे करीब होता तो क्या मिलता, क्या दुनिया और आखिरत हियर एंड हियर आफ्टर काम आने वाली चीज, ये याद रखो, हियर एंड हियर आफ्टर हर चीज जो कनेक्टेड है वो मौला हुसैन से, देने वाला इमाम अल्लाह, मौला हुसैन के जरिए हर चीज मिले। तो ये लाजिम है, अपने आप को इतना कनेक्ट कर लो इमामों से, इतना कनेक्ट कर लो कि इमाम के करीब पहुंच जाओ, आपको यहां भी और वहां भी जो फायदा मिलने वाला है वो इमाम ही से मिलेगा। मुहर्रम में, मुहर्रम की मैं हमेशा एक जुमला बोलता हूँ कि प्रैक्टिस की तरह मुहर्रम, रूटीन की तरह मत करो, चेंज के साथ। लास्ट ईयर जो आपने किया उससे और ज्यादा चेंज, और ज्यादा चेंज, इतना चेंज आना कि तुम जब जिक्र हुसैन करो, मजलिसों में जाओ, मजलिसों से बाहर निकलो, वो एक घंटे में भी चेंज आ सकता, फिक्र बदल सकती, सोच बदल सकती उस एक घंटे के। एक मजलिस सुन रहे आप किसी जाकिर की, किसी आलिम दीन की, मैं तो एक स्टूडेंट हूँ एक आलिम दीन की, तो उस मजलिस में जाने के बाद आपकी लाइफ में एक चेंज आ, फिक्र बदल, आप सोचो कि ये वो जिक्र इतना स्ट्रॉन्ग जिक्र है, इतना स्ट्रॉन्ग जिक्र है कि 1400 साल से हुकूमतें बदल गई, गवर्नमेंट्स बदल गए, लोग बदल गए, लेकिन जिक्र हुसैन नहीं। आप समझने में 1400 साल हो गए, उसके बाद भी आज भी वो कनेक्शन इतना मजबूत है, इतना मजबूत है। हालात बदल गए, मुल्क बदल गए, लोग बदल गए, जबानें बदल गई, लेकिन उसके बाद भी हुसैन का जिक्र उसी अंदाज से, उसी तरह से स्ट्रॉन्ग चल। इसलिए कि इन मजालिस की बानी कौन है, बानी अज़ा कौन है, बानी फर्श अज़ा कौन है, मेरी मजलूम पहली मजलिस करके बीवी ने हमको वो तोहफा दिया, वरना हम कैसे इमाम से कनेक्टेड हैं। मजलिस की इंपॉर्टेंस को समझ, मजलिस क्या चीज है, फर्श अज़ा क्या चीज है, कि बीवी ने इस मजलिस की बुनियाद डाल के, मजलिस को स्टार्ट करके, जमीन के ऊपर पहली मजलिस जो मौला हुसैन की शहादत के बाद हुई, उसका बानी कौन है, उसका बानी मेरी शहजादी है। आप सोचो बीवी मजाक पे में नहीं आए, किन हालात में शहजादी ने मजलिस की थी, इतनी अल्लाह पूरा घर लुट गया, बच्चे जिबा हो गए, भाई शहीद हो गए, बीवी जईफ हो गई, करबला से कूफा, कूफे से शाम आ गया, बीवी जईफ दरबारों में गई, अभी मसाक में नहीं आया, गिरिया करना करते रहो, अय्याम सिर्फ गिरिया क्या अय्याम, दरबारों में गई शहजादी। उसके बाद जब रिहाई हुई, मैंने कह दिया दरबारों में गई, कितनी आसानी से कहा, और हुसैन की यतीम को सुपुर्द खाक कर दिया, बीबी सकीना की शहादत भी हो, छोटी सी लहर में बच्ची को लिटा दिया, लिटा कर जब रिहाई हुई, और चौथे इमाम ने आके कहा कि फूफी अम्मा मैं कह रहा जालिम यजीद ने हमको रिहा कर दिया, आप चाहे यहाँ रहें चाहे मदीना रहें। बस दोस्तों हुसैन की कामयाबी, हुसैन की विक्ट्री, हुसैन की जीत। जब कहा तो बीवी ने कहा बेटा अभी मैं कहीं नहीं जाऊंगी, अभी मैं कुछ नहीं कहती, जालिम यजीद से कहो कि एक मकान खाली करे, जब से मेरा भाई शहीद हुआ मेरे भाई की मजलिस नहीं की, मेरे भाई का मातम नहीं किया, मेरे भाई पे गिरिया नहीं किया, उससे कहो कि एक मकान खाली करे, हम मजलिस करना चाहते हैं। अजीजो जालिम यजीद के महल में एक जगह मकान खाली किया गया, और बीबी आई और आगे खाक पे बैठ गई सारी सैदानियां। आप सोचो कि जिस मुल्क में, जिस शहर में बीबी असीर होकर आई थी, उसी शहर में हुसैन की कामयाबी का परचम को लहरा कर जैनब कहा उस वक्त तक मैं नहीं जाऊंगी जब तक माजाए की मजलिस ना करूं, जब तक भाई की मजलिस ना करूं, तो उस वक्त बीवी को देखो, पहली मजलिस, पहली बानी मजलिस, अब हर मजलिस की बानी अली की बेटी है। तो अब आप इंपॉर्टेंस ऑफ मजलिसों को समझो। उसके बाद क्या किया, आके खाक पे बैठ गई। क्यों? बीवी ने बताया आने वाले जमाने के शियों के लिए। बीवी जानती थी कि वक्त ऐसा आएगा कि अगर कोई गरीब मजलिस करना चाहे और उसके पास फर्श का इंतजाम ना हो, उसके पास कुछ ना हो, तो बीवी ने पहली मजलिस खाक पे करके हमको दर्ज दिया कि मेरे भाई की मजलिस के लिए कोई चीज की जरूरत नहीं। अगर फर्श नहीं है, तुम इंतजाम नहीं कर सकते, तो तुम जमीन पे बैठ के मजलिस करो, हम आएंगे। और वही खाक पे बैठ के मजलिस की। अब मजलिस करके दुनिया को पैगाम दे दिया कि ज़ैनब यहां से कामयाब वापस जा रही। अजीजो, यजीद के महल में, यजीद के जालिम के शहर में, कि जहां असीर होकर आई थी, वहां पे परचम को लहरा दिया कि अब यह मजलिस को कोई रोक नहीं सकता, अब यह मजलिस को कोई खत्म नहीं कर सकता। इसलिए नहीं खत्म कर सकता कि इसकी बानी शहजादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा है। तो बीबी ने हमको वो दर्ज दिया कि मजलिस हुसैन में कभी तकल्लुफ नहीं करना, और मजलिस हुसैन किसी की मोहताज नहीं है, न जगह की मोहताज है, न फर्श की मोहताज है, न दौलत की मोहताज है। अगर तुम्हारे दिल में मजलिस तुम करना चाहते, तो मजलिस खाक पे करो, अंधेरे में करो, जमीन पे करो, हम आएंगे। और आज वही होता। आज जो कामयाबी है मौला हुसैन की, 1400 साल से हुकूमतें बदली, जालिमीन आए, सारे मजलिसों को रोकने वाले, सारे पैगाम हुसैन को रोकने वाले जालिमीन खत्म हो गए। लेकिन हुसैन का पैगाम कल भी था, आज भी और कल भी रहे। ठीक है, रोकने वाले कुछ दिनों के लिए रोक रहे, आज भी रोक, आज भी वो प्रॉब्लम कि कई शहरों में इस वक्त आजादारी नहीं हो रही। लेकिन कोई बात नहीं, आज नहीं हो रही, कल आजादारी होगी इंशाल्लाह। इसलिए न तुम कर रहे हैं, न कोई और कर। तुम कब तक रोकोगे? बनी उमैया और बनी अब्बास ने नहीं, वो कामयाब नहीं हो सके। हुसैन की जिक्र की ताकत है, ताकत है, एक पावर है, एक ताकत है, एक पावर है। वो आंखें जो अश्के मसरत से भी नम ना हुई गमे हुसैन में, वो भी बाई जाती। वो गर्दने जो खुदा के लिए भी खम ना हुई दरे हुसैन पे, वो भी झुकाई जाती। आज दरे हुसैन पे कौन आके सलाम नहीं करता, कौन नहीं है? हर मजहब और मिल्लत का आदमी करबला मौला की ताकत उठा के देखो, करबला मौला का वो पावर उठा के देखो कि कितनी तादाद में मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस लोग बड़े आराम से, बड़े जज्बे के साथ जाए। और आज माशाल्लाह पूरी दुनिया में जिक्र हुसैन। हमारी दुआ यही है, हमारी कोशिश यही है, हम यही ट्राई करते रहे और यही दुआ करते रहे, जिंदगी के मकसद को बना लो जिक्र हुसैन। ये नहीं कि एक मजलिस की और आके घर में बैठ गए। ठीक है, मजबूरी है तो कोई बात नहीं, मजबूरी है तो हालात ऐसे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी भी है, आपकी भी जिम्मेदारी है, आपकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप मजलिस हुसैन को ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करो। इसलिए कि आज अगर हमारी बखा है, अगर आज हम बचे हुए हैं, मैं बड़े उससे मिंबर से बोल रहा और अहले बैत चैनल के प्लेटफॉर्म से बोल रहा, दोस्तों दो मुहर्रम की मजलिस में, कि अगर आज हम बचे हुए हैं तो सिर्फ और सिर्फ मौला हुसैन के जिक्र की वजह से, वरना कौन खत्म हो जाते, नाबूद हो जाते हमेशा के लिए, खत्म हो जाते। वी आर सो लकी कि हमारा रिलेशनशिप मौला हुसैन के साथ है, हम मौला हुसैन से कनेक्टेड हैं और हमेशा रहें। दुआ यही है कि अल्लाह आखिरी लम्हे तक हम मौला हुसैन से कनेक्टेड हैं। इसीलिए कहा कि जब तुम्हारी मौत आए तो दुआ ये करो, वसीयत ये करो कि हुसैन से कनेक्टेड रहने के लिए और तकलीफों से नीचे बचने के लिए दुआ ये करो, दुआ ये करो कि अपनी औलाद को बताओ कि जब मुझे दफन करना तो खाके शिफा मेरे साथ। और बताओ, एक अजीम आलिम दीन मरजाए वक्त अपने दौर के आगाए मरशी नजफी, बड़ा नाम है नजफ अशरफ में, अल्लाह मौला की ज़ियारत से आगाए मरशी नजफी, एक अजीम आलिम दीन, आपको मालूम उनकी वसीयत क्या थी? वो जो पूरी जिंदगी کچھ دن کچھ سال بولے آخری ایام میں ان کے پاس رومال تھا جو مجلس حسین میں ہر آدمی رکھتا رومال, مجلس حسین میں جو گریا کرتے تھے وہ آنسو اس رومال میں دیتے, اور ان کی وصیت تھی آپ جا کے دیکھ رہے ہیں, میں نام لے رہا ہوں مرشی نجفی, ایک عظیم عالم تھے, اللہ ان کے درجات کو بلند کرے, بڑا مولائی بڑا آزاد, ان کی وصیت تھی کہ جب مجھے دفن کرنا تو اس کے ساتھ میرے اس رومال کو بھی دفن. پوچھا کیوں؟ تو کہا یہ میری بخشش کا سہارا, اتنا بڑا عالم دین نجف ہے شب, کہا یہ میری بخشش کا سہارا بن جائے, وہ آنسو وہ غم حسین کے آنسو جس رومال میں جذب ہوئے اس رومال کو وہ جو ہے اپنے ساتھ کفن کے اندر رکھ پاتا. یہ مرشی نجفی کا واقعہ. اس کے بعد خاک شفا ہم رکھتے ہیں, اور حکم بھی کہ خاک شفا میت کے ساتھ دفن کرو. کیوں؟ وہ عذاب الہی سے بچے. 1400 سال کے بعد طاقت حسین دیکھو, جو چیز کا رشتہ حسین سے نسبت ہو گئی, جس کا رشتہ حسین سے نسبت ہو گئی, اس میں آ کے بتاؤ کہ اگر تم اپنے عذاب سے بچنا چاہتے, تکلیفوں سے بچنا چاہتے, لحد میں تنہائی سے بچنا چاہتے, تو خاک شفا کو اپنے ساتھ وصیت کرو. کربلا مولا کا کفن تو سب کے پاس ہے, سب کے پاس ہے, تو اپنے بچوں سے وصیت کرو یا پہلے سے اس میں خاک شفا رکھو, جس دن آئیں گے اور رکھ کر بچوں کو بتا دو کہ میرے ساتھ یہ چیز ہے. ان 1400 سال کے بعد اس خاک میں اتنا پاور ہے کہ آپ عذاب الہی سے بچ جائیں, آپ تکلیف سے. یہاں تک کہا گیا کہ اگر تمہاری دعا قبول کہیں نہیں ہوئی تو تم خاک شفا کو اپنے ہاتھ میں لے کے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کرو. نماز کے لیے کہا گیا کہ آپ تسبیح مظلوم بی بی زہرا جو پڑھ رہے آپ خاک شفا پہ پڑھو, اگر خاک شفا آپ کے پاس نہیں ہے تو سجدے کا ہاتھ میں لے لو, اور اس کے بعد 34 مرتبہ اللہ اکبر الحمدللہ اور سبحان اللہ کی تسبیح پڑھو. پھر دیکھو انشاءاللہ کیسی تمہاری دعاؤں کی قبولیت ہے. مولا حسین سے جو چیز ریلیٹڈ ہے, جو چیز نسبت ہے, اس نسبت میں وہ اثر ہے, وہ پاور ہے, وہ طاقت ہے, وہ قوت ہے کہ اس سے تمہاری ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر دنیا میں بھی تمہاری دعاؤں کی قبولیت ہے, آخرت میں بھی دعاؤں کی قبولیت ہے. دوستو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, میں بڑی اس سے بول رہا کہ اللہ ہم کو معاف کر دے, ہمارا اعمال نامہ زیرو ہے, ہمارے اعمال نامے میں کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, لیکن صرف ایک بھروسہ مولا حسین کا, صرف ایک بھروسہ امام حسین کا, اور کہ وہ بھروسہ یہ کہ حسین ہماری بخشش کروا دیں گے, حسین ہماری مدد کریں گے. تو اس حسین سے اپنے آپ کو اتنا کنیکٹڈ کر دو, اس حسین سے اپنے رشتے کو اتنا مضبوط کر دو کہ رشتہ اگر مضبوط ہو جائے گا, رشتہ مضبوط ہو جائے گا تو پھر آپ کے لیے بقا ہے, ٹوٹل بقا ہے. رشتہ مولا حسین سے مضبوط کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. میں آپ کو ایک بات بولوں, ہم دنیا کے بڑے بڑے لوگوں سے رشتہ بنانا چاہتے ہیں, دنیا کے بڑے بڑے لوگوں سے ہم رشتہ بنانا چاہتے ہیں, لیکن ہم امام حسین سے رشتہ بناؤ. اس کے بعد دیکھو یہ ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے. میری ٹاپک ہی یہی ہے نا کہ ایک شیعہ کی ذمہ داری اس غیبت امام میں, اس دور میں ہماری ذمہ داری کیا ہے. تو ذمہ داریوں میں یہ لازم ہے کہ اپنے رشتے کو پہلی دوسری مجلس میں صرف اسی پہ زور دے رہا کہ اپنے رشتے کو, اپنے ریلیشن شپ کو مضبوط کرو. ریلیشن شپ کو مضبوط کرنے کے لیے آپ کو وہ کام کرنا پڑے گا, وہ چیزیں کرنا پڑے گا جو مولا حسین چاہتے ہیں. جب تک آپ کی فکر ادھر نہیں جائے گی کہ مجھے یہ کرنا ہے, امام حسین چاہتے کیا ہے, امام حسین آپ سے کوئی دولت نہیں مانگ رہے, کوئی پیسہ نہیں مانگ رہے, امام حسین آپ سے کچھ نہیں مانگ رہے, ایک ہی چیز مانگ رہے کہ تم میرے ذکر کو, میرے پیغام کو دنیا تک پہنچاؤ. اپنے اپنے طریقے سے, اپنے اپنے سٹائل سے آپ پہنچائیں. آپ میں تو ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ گھر سے شروع کرنا, گھر میں بچوں کو اسٹرانگ کرنا, آپ رہو یا نہ رہو عزاداری کو بچے لے کے آگے بڑھنا, سینہ بہ سینہ چلنا. یہ عزاداری اتنی آسانی سے ہمارے پاس نہیں آئی, عزاداری کے لیے قربانیوں کو دیا گیا, عزاداری کے لیے سیکریفائس کیا گیا, عزاداری کے لیے بچوں کو ذبح کروایا گیا, عزاداری کے لیے یتیم ہو گئے بچے. لیکن اس کے باوجود, لیکن ان کی ماؤں نے یہی کہا کہ نہیں, ہم کو عزاداری کو بچانا ہے. हम हर चीज कुर्बान कर देंगे, और हर चीज कुर्बान करने के बाद भी हम सिर्फ आजादारी की हिफाजत करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा जज्बा रहना चाहिए, ये हमारा फील, हमारी फीलिंग्स रहना चाहिए। ये जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी है। तो मजलिस के बाद बैठ के हम जो डिस्कस करते हैं, आपने उन डिस्कशन में आप ये एक दूसरे से पूछो कि तुमने क्या जिम्मेदारी पूरी की, या तुम कैसे मदद कर रहे, तुम कैसे इमाम की नुसरत करने के जज्बे को पैदा करें, एक दूसरे को नुसरत के जज्बे को पैदा करवाओ, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहो। मोमिन जब रहता है तो उससे फायदा है। दोस्तों, आजादारी हमारी जरूरत नहीं है, हमको आजादारी की जरूरत, हमको आजादारी की जरूरत है। हम आजादारी की वजह से कनेक्टेड है। आप देखें दूसरी कौमों को जाकर उनके पास क्या है। एक फर्श अजा, मेरे जुमले गौर से सुनो, एक फर्श अजा है कि जिसने सबको यूनाइट कर दिया। हर मजहब और मिल्लत का आदमी आके बैठता, हर जबान बोलने वाला आके बैठता, हर शहर से आने वाला आके बैठता। हम नहीं जानते थे इसको, ये फुला शहर में रहता था, ये फुला शहर में रहता था, लेकिन एक मुहर्रम ऐसा है, एक मजलिस हुसैन ऐसी है कि उस मजलिस में सारे के सारे आके एक ही फर्श अज़ा पे बैठ गए। इसलिए बैठ गए कि हुसैन हम सब के है, हुसैन एक परचम के नीचे लाए, हुसैन की वजह से आज इस्लाम यूनाइटेड है, आज हुसैन की वजह से आज हम सब यूनाइटेड है। मौला हुसैन का सदका है, मौला हुसैन के जिक्र का है कि जिसकी वजह से हम आज एक है। सलवात पढ़ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो इस जिक्र को बचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, इस जिक्र का साथ देना तुम्हारी जिम्मेदारी। हम ज्यादा से ज्यादा इस जिक्र की मदद करें। नुसरत इमाम यही हमारी जिम्मेदारियां, जो मुहर्रम की जो हमारी जिम्मेदारियां, जो मेरी टॉपिक वो यही कि रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एशिया, हमारी जिम्मेदारी क्या है। साल भर तो आप एंजॉय कर रहे हैं, अब मौका मिला है, अब मुहर्रम आ गया, अब इतना अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करो, हर चीज करो। मैं किसी चीज को नहीं रोका, जॉब पे जाओ, बिजनेस पे जाओ, स्कूल जा रहे बच्चे जाओ, कॉलेज जा रहे जाओ, पढ़ो अच्छा, इसलिए कि जितने इल्म को हासिल करोगे उतना हुसैन समझ में आएगा। जहालतों में हुसैन समझ में नहीं आते, इल्म के साथ समझ। जितना इल्म को हासिल करो उतना तुम करबला को समझो, करबला को समझने के लिए इल्म को हासिल करो। बच्चे जा रहे बेहतरीन स्कूल्स और कॉलेजेस में पढ़ो, प्रोफेशनल कोर्सेज करो, ओवरसीज स्टूडेंट्स आके यूके में पढ़, आप तो वही कह रहे, आप पढ़ो, अच्छा एजुकेशन को हासिल। जितना अच्छा एजुकेशन को हासिल करोगे उतना अच्छा तुम प्रोपोगेशन कर सकते, उतना अच्छा तुम दुनिया तक करबला को पहुंचा सकते। जितना तुम करबला को पहुंचाओगे वो एक इमाम की नुसरत है, वो जिम्मेदारी है तुम्हारी। वन ऑफ दी रेस्पॉन्सिबिलिटीज जो है उसमें ये भी है कि आप अच्छे इल्म को हासिल करके करबला को दुनिया तक पहुंचाओ, करबला की अवेयरनेस को दिलाओ कॉलेजेस में, स्कूल्स में। अब मैं एक बात बोलता, मैं स्टूडेंट्स को बोल रहा, यूथ को बोल रहा, जितने स्टूडेंट्स हैं लड़के लड़कियां उनको बोल रहा कि आप नए हैं, आप स्कूल छोड़ के अब आप यूनी में गए, तो यूनी में गए आपको डिफरेंट कल्चर के स्टूडेंट्स आपको मिल रहे, डिफरेंट कल्चर डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलने वाले स्टूडेंट्स मिल रहे। आप क्लास में गए और आपके हर मजहब का लड़का लड़की बैठी हुई और आप पढ़ रहे, तो मैं आपसे ये बोल रहा कि आपको यू डोंट नीड टू से विच रिलीजन यू बिलोंग टू, कुछ तुम कॉलेजेस में यूनिज में जब जाओ, मैं स्टूडेंट्स को बोल रहा कैसे प्रोपोगेट करो, तो जाओ तो तुम इतने सॉफ्ट स्पोकन रहो, इतनी मीठी जबान से बात करो, अपने कैरेक्टर को इतना बुलंद करो, एक दूसरे की हेल्प करने की कोशिश करो, बच्चों से अच्छे अखलाक से तुम्हारा बिहेवियर इतना अच्छा हो कि कोई लड़का हो कोई लड़की जो आपके करीब है, जो आ रही देख रही वॉच कर रही आपको, आप इतने करीब इतने अच्छे अखलाक से इतनी मीठी जबान से अपने दोस्तों से अपने फ्रेंड से बात करो कि वो तुमको पूछे कि तुम किस रिलीजन को बिलोंग करती हो, तुम कौन हो, तो उस वक्त बोलो कि मैं हुसैनी, मैं करबला वाली, मैं अली वाली। इस तरह प्रोपोगेट करो, इस तरह पैगाम इमाम को दुनिया तक, और जब तक पहुंचोगे, इसीलिए मेरे छठे इमाम ने कहा کہ شیعتنا کونو لنا زینا، شیعتنا کونو لنا زینا، اے میرے شیعو تم ہمارے نام کو زینا، تم ہمارے نام، تم ایسے بنو، ایسے رہو، ایسے رہو کہ تمہارے ذریعے لوگ ہم تک آئے۔ کتنا بڑا بھروسہ امام نے ہمارے اوپر کیا، کتنا بڑا بھروسہ کیا کہ شیعتنا کونو لنا زینا، اے شیعو ہمارے لیے زینت بنو۔ تب آپ سوچو اگر ہم سے امام کے لیے ہم بن سکتے، ہم بن سکتے، ہم بنا گا۔ یہ مولا حسین کا محرم، آپ مجلسوں میں جا رہے ہیں، ایک دوسرے سے ملو، ایک دوسرے سے بات کرو، ہیلپ کرو نیاز میں، ہر چیز میں، اور جب جاؤ تو پوری فیملی کے ساتھ، اور جب جاؤ تو بچوں کو بولو، بچوں کو بولو جاتے وقت مجلس میں، بیٹا ہم امام کے ذکر کے لیے جاتے ہیں، ہم مجلس حسین، بچوں سے مولا حسین کی کچھ مسائل بتاؤ، مولا حسین کا ذکر کرو راستے میں، اور واپسی میں بچوں کو پوچھو بیٹا تم نے کیا سیکھا آج، تم نے کیا سیکھا، تم نے مولانا کی کون سی بات تم کو اچھی، تم خالی یہ بتا کر جاتے ہو کہ کوئی ایک بات مولانا کی تم کو سننا ہے کیئرفلی، اور مجھے واپسی میں بتانا ہے۔ تو بچہ جب وہاں فرش اعضا پہ بیٹھے گا تو وہ سنے گا، کنسنٹریشن، پورے کنسنٹریشن کے ساتھ پوچھے گا۔ تو واپسی میں اس سے پوچھو جب واپس آئے کہ بیٹا کیا کیا، کیا سنا، کیا اچھی بات لگی، تو اس طرح وہ لوگ بھی کنیکٹڈ رہیں گے، اس طرح وہ لوگ بھی کنیکٹڈ رہیں گے ذکر حسین سے، ان کا دماغ ادھر ادھر نہیں جائے گا، وہ ادھر ادھر بچے بھاگیں گے نہیں، بلکہ وہ کنیکٹڈ رہیں گے۔ تو میری خواہش آپ سے یہی ہے کہ اس وقت محرم میں یہ نہیں کہ ایک مجلس میں جا رہے ہیں، ایک فارمیلٹی پوری کر رہے ہیں اور واپس آ جا رہے ہیں، نہیں، ہر مجلس سے کچھ لے کے اٹھو، ہر مجلس سے بچوں کو بتاؤ کہ تم کو یہ کرنا ہے، تم کو یہ کرنا ہے، ان کو عادت ڈالو سرو کرنے کی۔ جیسا گھر میں آپ کے پاس کوئی اگر ایونٹ ہو تو آپ کے بچے سرو کرتے، اسی طرح وہاں پہ بھی کوشش کرو والنٹیئر کرنے کی، وہاں پہ بھی کوشش کرو نیاز دینے کی۔ اگر وہ سب نہیں کر سکتے تو اپنے بچوں کو بازو بٹھاؤ مجلس حسین میں، ماں سے بھی کہہ رہا، باپ سے بھی کہہ رہا، اگر بچے چھوٹے ہیں تو کوشش کرو کہ اپنے پہلو میں بٹھاؤ اور سناؤ، اور جتنی دیر وہ فرش اعضا پہ رہیں گے تو ان کو پتا چلے گا کہ یہ فرش اعضا کی امپورٹنس کیا ہے، اور برکت فرش اعضا آپ کے سامنے ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے اس اعضا کا جو فرش ہے۔ اس لیے کہ میں نے ابھی آپ سے کہا کہ بانی مجلس میری مظلوم شہزادی ہے، شہزادی اس اعضا کی بانی ہے، محافظ اعضاداری میرا امام زمانہ ہے۔ تو یہ ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری کہ محرم میں بچے اتنے پرفیکٹ ہو جانا، بچے اتنا سیکھ لینا کہ ان کو تہذیب عزاداری پتہ چل جائے، پھر گھر میں اگر آپ ڈسکس کر رہے دوستو یہ چیز تم کیری کر سکتے اپنی زندگی تمام۔ آج تم لے کر جا رہے، جب بچہ پڑھنے کے لیے کہیں اور جا رہا، لڑکی کہیں اور جا رہی، تو وہاں پہ بھی وہ کوشش کرے گی کہ مجھے عزاداری کرنا ہے۔ کتنے فونس آتے ہیں، نئی جگہ، ابھی میونک کے لیے ڈاکٹر جا رہا ہے بنگلہ دیش سے، اور جا کے وہاں پہ وہ پی ایچ ڈی کر رہے، تو ان کی ماں کا فون آیا کہ مولانا اگر آپ میونک میں کسی کو جانتے تو مجھے اس کا کانٹیکٹ دیجئے، ایڈریس دیجئے، اس لیے کہ میری بیٹی جا رہی اور عزاداری کے لیے ہم کو کچھ ہیلپ چاہیے۔ یہ فکر دیکھو آپ، کتنا اچھا لگا مجھے۔ میں نے کہا آپ جائیے، انشاءاللہ میں آئی ٹرائی ٹو گیٹ کانٹیکٹ ان میونک، میرا میونک میں نہیں ہے لیکن میرا فرینکفرٹ میں اور دوسری جگہوں پر ہے، میں ان سے پوچھوں گا۔ تو یہ فکر آئی کیسا کہ بچی جا رہی تو اس کے لیے عزاداری کے لیے فکر ہو، یہ عزاداری کی فکر اس کی زندگی میں وہ خوشیاں عطا کرے گی، مولا حسین کے غم کی برکتوں سے وہ خوشیاں ملے گی کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو ہمیشہ کوشش کرو کنیکٹڈ رہنے کی امام حسین سے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ بس میرا وقت ہو گیا، آلموسٹ 40 منٹس کی مجلس ہو گئی، یہ 45 منٹس کی مجلس ہے۔ یہ ایام میں تو کوشش یہ کرو کہ زیادہ سے زیادہ گریا کرو، زیادہ سے زیادہ ماتم کرو، بس ایک صلوات پڑھ لیا محمد و آل محمد پر۔ کوشش کرتے رہو کہ عزاداری باقی رہے، ہم نہیں بچانے والے، اللہ بچانے، لیکن ہماری کوشش ہونا چاہیے بقائے عزاداری پہ، ہماری کوشش ہونا چاہیے کہ جتنا ہو سکے ہیلپ کرو عزاداری، جتنی ہو سکے عزاداری کے لیے کام کرو۔ دوستو ہم کو پتا نہیں آپ کا ایک پاؤنڈ ایک پاؤنڈ ایک پاؤنڈ ایک پاؤنڈ تمہاری بخشش کا سہارا بن گیا، کتنے واقعات کہ اس نے میرے जिक्र मेरी मजलिस में उसने ये किया। तबारुक खिलाने में, न्याज खिलाने वाला गैर मजहब का है, गैर मजहब का है। पूरी जिंदगी एक इमाम के चाहने के वाले के पास काम करता था, उसके घर में आजादारी हुई 10 दिन की आजादारी बस। तो आजादारी में हेल्प करता था, गैर मजहब से मुसलमान था लेकिन दूसरे मजहब बिल्कुल। और जो लोग आते थे उनके मिसाल के तौर पर उनके जूते उठा रहे, मिसाल के तौर पर उनकी चाय सर्व कर, सिर्फ एक तस्वर था कि मैं इमाम हुसैन के आजादार के लिए मेहनत करूं चाय सर्व। ये उसकी बख्शिश का सहारा बन गया। मैं कोई फेरी टेल स्टोरी नहीं सुना। इंतकाल के कुछ दिनों के बाद वो मालिक के ख्वाब में आया, पूछा कैसा है तू, नौकर था पूरी जिंदगी। कहा कि मालिक मैं बहुत अच्छा हूं, सुकून। तो ये तो जानते थे कि ये शिया नहीं था। पूछा क्या हुआ। कहा जब मैं पहुंचा नीचे, सबको जाना है सबको जाना है, जब पहुंचा तो उस वक्त मेरे पास तो कुछ नहीं, मेरी बख्शिश का सहारा ये मजालिस हो गई, ये आजादारी में जो मैं हेल्प करता, आजादारी आजादारों की जो मैं मदद करता, सिर्फ चाय सर्व कर रहा, मिसाल दे रहा हूं, पानी सर्व कर रहा, नियाज हुसैन सर्व कर रहा। कहा ये मेरे मौला हुसैन की इतनी मदद हुई कि हुसैन ने कहा इसे छोड़ दो, ये मेरे आजादारों की खिदमत करता था दुनिया। आप समझे मजलिस हुसैन को आप छोटा समझे, ये जिम्मेदारी है। मैं सिर्फ रिमाइंड करा रहा इस अशरे मुहर्रम में, दो मुहर्रम की वजह से कोई छोटी चीज है, ये छोटी चीज है दोस्तों, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। दुनिया और आखिरत में तुमको मिलेगा। इमाम किसी का रखते नहीं, याद रखो इमाम किसी का नहीं। मौला हुसैन वो अता करेंगे और अता कर, आज हमारी जिंदगी, हमारी सेहत, हमारी हेल्थ, हर चीज मौला हुसैन से, घर बार दौलत बच्चे सब हुसैन कर सकता है वो हुसैन। बस मैंने मजलिस खत्म कर दी, मेरा वक्त हो गया। वो मेरा मौला हुसैन जो 28 जिलिज में रास्ते में थे, मेरा मौला मदीने को छोड़ता है, आज शब-ए-तीन है। एक रिवायत से मौला हुसैन करबला की तरफ आ रहे हैं। बस ज्यादा देर नहीं, हुसैन जब रास्ते में थे असनाए राह में मुहर्रम का चांद नजर आ गया, फातिमा का लाल तड़प गया, बीबियां तड़प के रोने लगी। शहजादियों को पता था कि क्या होने, बीवियों को मालूम। बस दोस्तों चलते चलते ये काफिला 2 दिन गुजर गए, शब-ए-तीन आ गई, करबला मोहल्ला ये काफिला पहुंचा। जब पहुंचे एक जगह पे जाके मौला का जुलजना रुक गया, घोड़ा रुक गया। मौला तो जानते थे ये जगह कौन सी है, लेकिन हुसैन ने बाज रिवायतों के तहत हुसैन ने 7 घोड़ों को बदला एक के बाद एक, जिससे कि घोड़े आगे नहीं बढ़ रहे। मौला झुके उतरे, जमीन से कुछ खाक उठाई, सूंघा, फिर डाला, समझ गए। इमाम ने मौला अब्बास से कहा कि अब्बास गरीब में जो बस्ती है वहां से लोगों को बुला के लाओ। मौला अब्बास ने जब बुलवाया तो दोस्तों बनी असद वाले थे, बनी असद का कबीला था, उनको जब पता चला कि फातिमा का लाल आया है, सब दौड़ते हुए मर्द औरत बच्चे सब आए, यबना रसूलल्लाह यबना रसूलल्लाह, पहली मरतबा ज्यारत कर रहे, आके मौला हुसैन की कदम बोसी की, सलाम किया। इमाम ने उनसे पूछा कि जमीन का नाम क्या है, किसी ने कहा मौला इसको मारिया कहते, किसी ने कहा मौला इसको शत्तल फुरात कहते। इमाम बार बार एक सवाल कर, ये बताओ कोई और नाम है, कोई और नाम है, कोई और नाम है, कोई और नाम है। तो एक बुजुर्ग ने आगे बढ़ के कहा कि मौला इसको कर्बोबला भी कहते हैं, इसको कर्बोबला भी कहते हैं। बस इमाम ने मौला अब्बास से कहा कि यहीं पे सवारियों को रोक दो, और बनी असद वालों से कहा कि मैं ये जमीन खरीदना चाहता हूँ। बस दोस्तों जैसे ही कहा खरीदना चाहता हूँ, उन लोगों ने कहा हाथों को जोड़ के कि मौला आप जब तक चाहे यहाँ पर रहे, लेकिन ये जमीन को ना खरीद, इसलिए कि ये जमीन हमने अपने बुजुर्गों से सुनी कि किसी को राज नहीं आती। हुसैन ने कहा आप खयामत तक हमको राज, जमीन खरीदी गई, काफिला रोका गया, उतारे सारी बीबियां काफिले में अपनी अपनी अमारियों से नीचे आई, बीबियां ठहर गई। जब शहजादी जैनब को पता चला कि अब हमको यही रहना है, और जब पूरा काफिला रुक गया, इमाम ने जमीन को खरीदा, जो दाम मांग रहे थे उसको अता किया, एक एग्रीमेंट बना। बनने के बाद जब मेरी मजलूम शहजादी को पता चला कि हुसैन ने जमीन को खरीदा, तो बीबी ने मौला हुसैन से पैगाम भिजवाया कि भैया को बोलो कि ये जमीन अली अकबर के नाम पर ले। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बस दोस्तों खेमे लगाए गए, सारी बीबियां खेमों के अंदर आई, हमारियां उतारी गई। कुछ देर गुजरी, बस फौरन जनाब जैनब ने जनाब फिजा से कहा कि जाके मेरे भैया को बुला कर लो। मौला हुसैन के पास फिजा आई और आके कहा कि आखा शहजादी बुला रही। इमाम बहन से मुलाकात के लिए खैमे में गए, जैसे ही गए तो कहा भैया ये कैसी जमीन है, जब से मैं आई हूँ मेरा दिल बड़ा घबराता है, भैया मुझे ऐसे लग रहा ये जमीन हमको राज नहीं आएगी। उसके बाद एक अजीब जुमला कहा भैया जब से मैं आई हूँ इस खैमे के पीछे से मेरे एक बीवी के रोने की आवाज आ रही है, और वो ऐसे तड़प के रो रही जैसे घर उजड़ गया, जैसे जवान बेटा शहीद हो गया। उस वक्त इमाम ने बीवी से कहा कि बहन तुम जानती नहीं ये कौन रो रहा, अरे ये कर्बोबला है, ये हमारी माँ अभी से आ गई, माँ है जो तड़प तड़प के रो रही, ऐसे रो रही जैसे बच्चे जिबा हो गए। बस ये सुनना था, अजीजो काफिला रुक गया, सैदानियां हम अपनी अपनी खैमों में आ गई। वो दिन गुजरे, जब आगे बढ़ा और इमाम वापस गए, बनी असद वालों से मुलाकात की, मुलाकात करके एग्रीमेंट करके जमीन को खरीद लिया। खरीद के इमाम ने उस जमीन के कागजात को, पेपर्स को वापस बनी असद वालों को हिबा किया। हिबा करके कहा कि सुनो हम 10 मुहर्रम को यहाँ पे शहीद हो जाएंगे, और जालिमीन मैं बोल रहा जालिमीन अपनी अपनी लाशों को दफन करके चले जाएंगे, तुम लोग आना हमारी लाशों को दफन करना। मैं वापस इसलिए भी पेपर्स कर रहा। इमाम ने कहा कि सुनो कुछ दिनों के बाद हमारी खबरें बनेंगी, और अगर हमारे जायरीन आए, जब जायरीन आए तो उनकी मेहमानदारी जरूर करना, उनके पानी का इंतजाम करना, उनके खाने का इंतजाम करना। मैं हाथों को जोड़ के मौला हुसैन से यही कहता कि मौला खुद तो भूखे शहीद हो गए, अरे बच्चे प्यासे जिबा हो गए, लेकिन अपने जायरीन का इतना ख्याल, आज जो कर्बला मौला में जो खाना खिलाया जाता है, जो सबीले लगती है, ये इमाम हुसैन की वो वसीयत है जो इमाम ने बनी असद वालों से की थी, और कहा था कि देखो मेरे जायर को भूखा नहीं रखना, मेरे जायर को प्यासा नहीं रखना। अजीजो अरे क्या करम हुसैन है, खुद प्यासा शहीद हो गया, अली असगर प्यासे जिबा हो गए, हुसैन के बच्चे प्यासे शहीद हो गए, सकीना एक खैमे से दूसरे खैमे में खाली कूजा लेके अलतश अलतश करती रही, पानी नहीं मिला, लेकिन इमाम अपने जायर का इतना ख्याल रख रहे। करम हुसैन को देखो क्या करम इमाम है कि वो वक्त भी आया कि दोस्तों इमाम ने बनी असद वालों से कहा, मर्दों से कहा कि तुम आके हमको दफन करना। उसके बाद इमाम की गुर्बत और बढ़ गई, मैं मजलिस को खत्म कर रहा, गुर्बत इतनी बड़ी, औरतों को बुलाया, औरतों को बुला के कहा कि देखो अगर तुम्हारे मर्द तुम्हारे मत हुकूमत के खौफ से आके हमको दफन ना करे, तो तुम पानी के बहाने से आना, पानी लेके एक एक मुट्ठी खाद हमारे जिस्मों पे डालना। अब गुरबते इमाम मेराज पे चली गई, मैंने मजलिस खत्म कर दी तब के रोके, मेराज पे चली गई। उसके बाद हुसैन ने छोटे छोटे बच्चों को बुलाया, गोद में उठाया, सर पे हाथ फेरा, फेर के कहा बच्चों अगर तुम्हारे माँ बाप हुकूमत के डर से आगे हमको दफन ना करें, खेलते हुए आना, एक एक मुट्ठी हमारी जमकात पे डाल देना, हमारे जिस्मों पे डालना। अरे एक एक मुट्ठी, आज वही होता है कि बनी असद वाले आगे इसी तरफ के कहते हुसैन हम आ गए, मौला हुसैन हम आ गए। इलाही सैयदी व मौलाया परवरदिगार मेरे मौला हुसैन का वास्ता, उनके बच्चों का वास्ता, हमारी ये मुख्तसर सी मजलिस को कबूल कर लिए, मजलूम बीबी जहरा की बारगाह में ये मजालिस कबूल हो गए, हमारे गुनाह कबीरा सगीरा को माफ कर दे। परवरदिगार तेरी इबादत की तौफीक अता फरमा, परवरदिगार हम सबको उमरा और ज़ियारात नसीब हो। जिन जिन लोगों ने आज की मजलिस में ताउन किया है, अल्लाह उनके रिस्क में बरकत दे, उनके मरहूमीन के दर्जात को बुलंद फरमा, पूरी दुनिया में शियत की हिफाजत फरमा, जन्नतुल बखी, जन्नतुल मौला, जनाब हमजा और अहले बैत की खबरों पे साया करके रोशन करो, आजादारी की हिफाजत फरमा। जिन जिन मुल्कों में आजादारी नहीं हो रही, परवरदिगार कोई ऐसा असबाब को पैदा कर दे कि उनके पास आजादारी हुसैन होती है। सब बीमारों को सेहत कामिल आता फरमा, मेरे इमाम ज़माना को सलामत रख और इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हम सबको इमाम के नासिरों में शुमार फरमा, हमारे सारे मरहूमीन हमारे वालिदैन के दर्जात बुलंद करें। एक सूरह फातिहा अपने अपने मरहूमीन, जिन जिन लोगों ने आज की मजलिस में ताउन किया उनके मरहूमीन, अहले बैत चैनल की एंटायर टीम के मरहूमीन और जमीए मोमिनीन मोमिनात ज़ाकिरीन मुश्तहिदीन मातबदार मराज आलम और अपने अपने सारे मरहूमीन के लिए, सैयद बाखर ज़ैनी साहब की वालिदा, उनकी अहलिया के मरहूमीन, मेरे वालिदैन और मेरी